दिन भर तारीख 23 जुलाई दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड ने भारत को दी 229 रन की चुनौती। अपडेट के लिए सीधे चलेंगे लंदन।
The score for England, 228 for 7 of their 50 overs.
कल पूरा हो रहा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में दी गई विदाई।
थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर, थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन, थैंक यू ऑनरेबल मेंबर।
और संग संग गुनगुनाओगे मैं आज बात महान संगीतकार खय्याम की।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आज संसद में अपने विदाई भाषण में उन्होंने नेता के तौर पर अपने काम को याद किया और कहा कि जुलाई 1 को लागू किया गया जीएसटी कानून संघीय एकजुटता का उदाहरण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उनके प्रति मोदी का विनम्र व्यवहार उन्हें हमेशा याद रहेगा। राजस्थान में पुलिस का कहना है कि उन्होंने भारत के सबसे बड़े तेल के कुएं से 5 करोड़ से अधिक कच्चे तेल की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पानी के टैंकरों में तेल भरकर ले जाने वाले इस गिरोह के 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवरों को टैंकर में पानी भरने की इजाज़त थी, लेकिन वो इनमें कच्चा तेल भर रहे थे। पुलिस के अनुसार बीते 6 सालों से यह काम चल रहा था और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। ये कच्चा तेल पास की 2 तेल कंपनियों को बेचा जा रहा था, जो इसे आगे अन्य खरीदारों तक पहुंचा रहे थे। मामले में पुलिस को अभी भी 70 लोगों की तलाश है। अमेरिका के सेंट एंटोनियो शहर में कार पार्किंग की जगह पर खड़े एक ट्रक से पुलिस ने 8 लोगों के शव बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि मामला मानव तस्करी से जुड़ा हो सकता है। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेक्सिको से जुड़ी अमेरिका की सीमा से कुछ घंटों की दूरी पर है सेंट एंटोनियो शहर। इस इलाके में मौसम काफ़ी गर्म और सूखा होता है। स्थानीय पुलिस अधिकारी विलियम मैकमेनस ने बताया कि एक दुकानदार ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी। हमने वहां का वीडियो चेक किया है और हमें पता चला कि वहां कई गाड़ियां पहुंची थीं और ट्रक पर सवार कई लोग जो अब भी शायद जिंदा थे, उन्हें गाड़ियां लेकर आगे बढ़ गई। हमें लगता है कि ये मानव तस्करी का मामला है और हम जांच कर रहे हैं। सेंट एंटोनियो शहर के स्थानीय पुलिस अधिकारी विलियम मैकमैनस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि बीते 6 महीनों में देश में हैजा के मामले 2 गुने तेजी से बढ़े हैं। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का मानना है कि साल के आखिर तक 6 लाख लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। देश में अप्रैल के बाद से अब तक हैजा के कारण 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके लिए यमन में चल रहे गृह युद्ध को कारण बताया जा रहा है, जिसका सीधा असर पानी और स्वच्छता जैसी सुविधाओं पर पड़ा है। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के प्रवक्ता इवान वाटसन ने कहा,
electricity has been hit, water supplies have been hit, and of course there's not enough food and medicine coming in.
सीधा असर बिजली की व्यवस्था पर हुआ है। पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है और खाना और दवाइयां की सप्लाई भी पर भी इसका बुरा असर हुआ है। लगभग आधी आबादी के बाद खाना, स्वास्थ्य सेवाएं और पानी की कमी है। एक बड़े तबाही के लिए मैदान लगभग तैयार हो चुका है। और आज हैजा की महामारी 3 महीने पहले शुरू हुई थी और मुझे लगता है कि साल के आखिर तक 6 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। ये थे रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के प्रवक्ता इवान वाटसन के शब्द। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के संचालक पानी के अंदर चलने वाले एक रोबोट ने संयंत्र के भीतर के जमे हुए पिघले परमाणु ईंधन की पहली तस्वीरें ली हैं, ये दावा किया है फुकुशिमा परमाणु के एक संचालक ने। अगर तस्वीरों से मिली जानकारी की पुष्टि हो जाती है तो इससे स्थान को साफ करने में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। संयंत्र को पूरी तरह से साफ करने में सालों लग सकते हैं और इसके लिए प्रभावित संयंत्रों के भीतर जमे ईंधन की जानकारी बेहद जरूरी है। 2011 में एक भूकंप के बाद आई सुनामी के कारण संयंत्र में बड़ा हादसा हुआ था और कई लोगों की जाने गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव।
वेल डन, कीप्स इट सिंपल, नॉट इजी टू डू।
इतिहास की दहलीज पर पहुंचने और इतिहास रचने के बीच एक बारीक रेखा होती है, जो इसे पार करने के लिए जरूरी जज्बा दिखाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर इसी कोशिश में है। 12 साल पहले फाइनल में हार गई भारतीय टीम आज उस कसक को मिटाने के इरादे में है। फाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 12 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन बना चुकी है। भारतीय टीम को अभी 186 रन चाहिए जीत के लिए। 9 विकेट उनके पास है और 38 ओवर बाकी हैं। सीधे चलते हैं लंदन, जहां मौजूद है बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी। इरम, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वहां क्या माहौल है। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, इंग्लैंड के समर्थक ज्यादा जोश में आपको देख रहे हैं या भारतीय समर्थक?
बहुत यहाँ पर जो है पहली दफा हिस्ट्री में वेमेंस क्रिकेट की ये मैच जो क्राउड देखने आया है सबसे ज्यादा क्राउड है आज तक का, और 26,000 कैपेसिटी बताई जा रही है एंड इट्स फुली सोल्ड। और इक्वली लोग जो है इंग्लैंड को भी चेयर कर रहे हैं और इंडिया को भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एशियन डायस्पोरा जो है यहाँ पर काफी बड़ा है। और दोनों जो है, बल्कि चक दे इंडिया और इस तरह के गाने जब लगते हैं, जब चौका छक्का बजता है, तो आपको डेफिनेटली इंडियंस है वो हावी नजर आते हैं इंग्लैंड के सपोर्टर्स पर। इस वक्त मिथाली राज और पूनम जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों बहुत पूरा तमाद लग रही है, लेकिन बॉलिंग करते वक्त जो जबरदस्त बॉलिंग गोस्वामी ने की, उन्होंने 3 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट ली, 3 मेडन ओवर दिए और सिर्फ 23 रन दिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है एक बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सका जो कि फाइनल में उसको करना चाहिए था। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो 30-40 रन जो है वो शॉर्ट
रह गया।
बिल्कुल
जी, मैंने आपका फेसबुक लाइव भी देखा था जो आपने मैच के दौरान किया था, जिसमें आपने भारतीय समर्थकों से बात की थी और उनका कहना था चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारतीय पुरुष टीम हार गई थी, आज अगर भारतीय टीम जीतती है तो वो कह रहे थे आपसे कि उसमें कसक वो मिट जाएगी। तो एक ये नया माहौल दिख रहा है महिला टीम के लिए, एक नया समर्थन दिख रहा है।
एब्सोल्युटली, आपको हमेशा वेमेंस क्रिकेट में जो एक मसला रहा वो यही रहा कि वन साइडेड मैचेस जो अक्सर हमें नजर आते रहे माजी में, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है इसमें बेहतरीन क्रिकेट वेमेंस क्रिकेटर्स ने खेली है और आज का मैच भी जिसे कहते हैं कि कांटेदार मुकाबला है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इंग्लैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा, और इंडिया जो है जाहिर बात है उसने बहुत एफर्ट की है और टीम ने जबरदस्त क्रिकेट खेला है जिसकी वजह से आज वो फाइनल में पहुंची
जी, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला है। इरम, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे कार्यक्रम में, पंजाब के मोगा भी चलेंगे जहां क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर के परिवार के साथ हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन मौजूद हैं। लेकिन एक कमेंट लेते हैं स्टूडियो में मौजूद आदेश कुमार गुप्त से। संक्षेप में आदेश जी, क्या तस्वीर है?
तस्वीर इस समय थोड़ा बिगड़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि कप्तान मिताली राज रन आउट हो गई हैं। एक मुश्किल रन लेने की कोशिश की और विकेट कीपर ने उनके क्रीज में पहुंचने से पहले ही व्हील्स उड़ा दिए। भारत के लिए बहुत
यानी भारत को दूसरा झटका लगा है। आदेश जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं भारत की एक अहम खबर का। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कल खत्म हो रहा है। उन्होंने देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2012 को शपथ ली थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए विदाई भोज आयोजित किया था। आज संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपने भाषण में राष्ट्रपति मुखर्जी के योगदान का जिक्र किया। वहीं राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन के विभिन्न पड़ावों को याद किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भी याद किया, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि संसद में व्यवधान से ज्यादा नुकसान विपक्ष को होता है। राष्ट्रपति ने कहा,
ऑनरेबल मेंबर्स, विद अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ए प्रेयर इन माय हार्ट।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कह रहे थे कि विदाई के वक्त उन्हें संतुष्टि और खुशी है कि वो इस संस्थान के माध्यम से इस महान देश के लोगों की सेवा कर सके। राष्ट्रपति मुखर्जी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से याद किया जाएगा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से यही सवाल किया।
प्रणब मुखर्जी ने जब शपथ उठाई थी उससे पहले उन्होंने, कुछ लोग जो उनसे मिले थे उनसे साफ साफ कहा था, मैं भी उनमें से एक था, कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रेसिडेंसी चलाएं, और यही संविधान का तकादा भी है। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्रपति होता है, और वो जो देश की काबीना है, कैबिनेट होती है, उसकी सलाह पे काम करता है। लगभग वैसा ही उन्होंने कर्तव्य निभाया। कभी भी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसा हादसा या घटना हमारे सामने नहीं आई जहां पर वो सरकार के खिलाफ कशमकश करते हुए नजर आ रहे हों या फिर सरकार के कहे अनुसार रबर स्टैम्प बनकर छाप लगा रहे हों।
अगर हम 21वीं सदी के भारत की बात करें तो जो राष्ट्रपति हुए हैं उनमें कलाम साहब को कहा जाता है कि वो आम लोगों के राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी ने भी कुछ कोशिशें इस तरह से की राष्ट्रपति के तौर पर कि उनकी एक अलग पहचान बने।
जी हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खोल दिए क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए, पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए। उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसके चलते लेखक क्रिएटिव आर्ट्स वाले लोग जो है वो वहां पर आके रह सकते थे और अपना काम कर सकते थे। उनको राष्ट्रपति की हॉस्पिटैलिटी मिलती थी। उन्होंने बहुत से सुधार अंदरूनी तौर पर राष्ट्रपति भवन में किए। जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने जो विभिन्न प्रमुख कमरे हैं वहाँ पर उनका इतिहास रिकॉर्ड करवाया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी एक स्कॉलरली व्यक्तित्व हैं और उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी पे एक स्कॉलरली छाप छोड़ी। एक दो बार जो उनकी राय मिली नहीं सरकार से, उत्तराखंड के मामले पे जब सरकार के कहने पे उन्होंने वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया तो फिर कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया, तो वो उनके लिए एक थोड़ा एम्बेरसमेंट वाला समय था। लेकिन उसके अलावा जब बार बार सरकार ऑर्डिनेंस लाती एनिमी प्रॉपर्टी बिल पे, तो उन्होंने पूछताछ की सरकार से कि ये बार बार ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं, इसको कानून बना के पार्लियामेंट से पारित करवाएं। तो जब आखिरी बार उन्होंने साइन किया तो उसके बाद वो कानून बना, पार्लियामेंट ने पारित किया। लेकिन यूपीए और एनडीए दो सरकारें उन्होंने देखी है अपने कार्यकाल में, लेकिन दोनों सरकारों के कार्यकाल में कोई भी ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ जो कि पहले एक दो बार हमको देखने में मिली भारत के इतिहास।
प्रणब मुखर्जी का लंबा राजनीतिक करियर रहा, उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। अब वो सक्रिय राजनीति में शायद उतना नजर ना आए, उनकी विरासत को भारतीय राजनीति किस तरह से याद करेगी?
तो स्वयं में एक इंस्टीट्यूशन है प्रणब मुखर्जी। जो आदमी 40-44 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, 23 वर्ष तक मिनिस्टर रहा हो, 28 वर्ष तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा हो, तो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। और उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के चलते उसके पास जो विजडम आता है, उसकी जरूरत किसी भी राष्ट्रपति को पड़ेगी और किसी भी उस व्यक्ति को पड़ेगी जो सामाजिक जीवन में है, जो पब्लिक लाइफ में है। तो उस लिहाज से प्रणब मुखर्जी एक दानिशमंद व्यक्तित्व के रूप में भारत के इतिहास में जाने जाएंगे और याद किए जाएंगे।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और अब वक्त है उस खास प्रस्तुति का जिसका श्रोताओं को रहता है हर रविवार इंतजार, यानी संग संग गुनगुनाओगे। कभी कभी, उमराव जान, बाजार और रजिया सुल्तान, ये वो फिल्में हैं जिनका जिक्र होते ही याद आता है इनका सदाबहार संगीत। संगीत और कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र आज इन फिल्मों का जादुई संगीत तैयार करने वाले खय्याम साहब की ही बात कर रहे हैं। इस विशेष श्रृंखला के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहनलाल शर्मा और संपादन किया है अजित सारथी ने।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया।
इतने मशहूर गीत को सुनते हुए ये बात अपने आप समझ में आ गई होगी कि आज हम खय्याम साहब की बात कर रहे हैं।
तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया।
एक ऐसे संगीतकार के बारे में जिसका ताल्लुक संगीत की उस जमात से रहा है जहां इत्मीनान और सुकून के साए तले बैठकर संगीत रचने की रवायत हुई। खय्याम का नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ने का मतलब ही ये समझा जाता था कि वहां कुछ अलग से संगीत की बात होगी जो प्रचलन में मौजूद संगीत से अलहदा है। मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी उर्फ खय्याम साहब का यही परिचय है कि वे हमेशा लीग से हटकर चले और ऐसी परंपरा में ना उनका कोई गुरु था और ना ही उनका कोई वंशज, यानी हम ऐसे स्कूल ऑफ थॉट के संगीतकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने किसी पारंपरिक लीग को चुना नहीं और ना ही उनकी परंपरा में बात का कोई दूसरा ही संगीतकार उस रास्ते गया।
शामे गम की कसम आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, दिल परेशान है रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम।
खयाम हर लिहाज से एक स्वतंत्र विचारवान और स्वयं को संबोधित ऐसे आत्म केंद्रित संगीतकार रहे हैं जिनकी शैली के अनूठेपन ने ही उनको सबसे अलग किस्म का कलाकार बनाया है। वे जब दर्द भरे गीतों की नुमाइंदगी में शामिल हों या जब वे बिल्कुल उत्सव का माहौल रच रहे हों, दोनों ही जगहों पर आप उन्हें अपने समकालीनों से थोड़ी दूरी बरतते हुए देख सकते हैं। खयाम ने कई परतों वाले संघर्ष करते हुए लाहौर के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक गुलाम अहमद चिश्ती और हुसलाल भगतराम के हुसलाल से संगीत सीखा था। इन दो गुरुओं से पाई हुई तालीम ने खयाम को कुछ नए प्रयोगों के लिए प्रेरित किया जिसके चलते आज हमें ऐसा सुंदर संगीतकार हासिल हुआ।
फिर ना कीजे मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको,
मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको।
खयाम के रूप में प्रसिद्ध होने के साथ उनके संगीत की एक खास पहचान भी बन गई थी, या उसे इस तरह कह सकते हैं कि वो रवानगी थी जो उनके दूसरे समकालीनों से सर्वथा भिन्न रही। वे पहले ऐसे संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं जिनके यहाँ पहली बार पहाड़ के सौंदर्य का रूप निर्धारण करने में वहाँ के लोक संगीत को मौलिक प्रयोग मिले। उन्होंने कुल्लू की वादियों में बजने वाले वहाँ के देशज वाद्यों से उठने वाली देसी आवाजों को अपने संगीत में स्थान दिया। पहाड़ी धुनों को घरेलूपन से फिल्मी धुनों में बदलने की जो कैफियत खयाम के पास है वो मुश्किल से दूसरे संगीतकार के यहाँ ढूंढी जा सकती है। एक गीत इसी आधार का सुनना चाहिए। पहाड़ी धुनों को लगातार कई कई बार अपनी फिल्मों में संवारने और उन्हें अपने ढंग से पिरोने के चक्कर में संगीतकार के रूप में खयाम ने जितनी मकबूलियत हासिल की उसी के साथ साथ कई बार अपने धुनों को वे एक रास्ता की तरफ भी ले गए। ऐसे मौलिक प्रयोग जहां उन्हें एक बड़े संगीतकार के रूप में स्थापित करते हैं कई बार फिल्म संगीत समीक्षकों की निगाह में उनकी सीमा भी तय कर देते हैं। हालांकि खयाम ने रेशमी और मुलायम धुनों को रचने का एक बड़ा काम किया। शगुन, शंकर हुसैन, उमराव जान, बाजार, रजिया सुल्तान और अंजुमन जैसे फिल्मों के दौरान खयाम का संगीत कुछ ज़्यादा ही सहज ढंग से रेशमी होता गया है। उसमें प्रणय और उससे उपजे विरह की संभावना अपार ढंग से मौजूद है। ऐसा महीन नाजुक सुरों वाला वितान जो सुनते हुए ये आभास देता है कि ये मौका ये क्षण, ये समय बस हाथ से सरक या फिसल जाएगा अगर हम उसे दोनों हाथों से एक बारगी थाम न लें। ऐसी ढेरों धुनों को खय्याम के उस सिग्नेचर के रूप में देखना चाहिए जो आज उन्हें एक बड़े संगीतकार का दर्जा दिलाती है।
अपनी आप रातों में चिमने सरकती है, चौंकते हैं दरवाजे सीढ़ियां धड़कती है। अपने
पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है।
की मकबूलियत को तफसील से रेशा रेशा बयां करने के लिए जिन दो फिल्मों का नाम लेना चाहिए उनमें उमराव जान और रजिया सुल्तान के नाम लिए जा सकते हैं। एक ऐसी प्रतिष्ठा का मामला जहां उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज का संगीत दिया, एक ऐसी रवायत को नए सिरे से सिरजा जो उसके बहुत पहले गुलाम मोहम्मद ने पाकिजा में करके दिखाया था। हम उमराव जान की चर्चा कर रहे हैं और उमराव जान के लिए जिस तरह उन्होंने पार्श्व गायिका आशा भोसले की आवाज़ को उनके निश्चित स्वरमान से थोड़ा नीचे उतारकर एक नीचे पिच पर ले जा करके गवाया और रिकॉर्ड किया वो असाधारण है। उमराव जान के गीतों को सुनना चाहिए और उनसे निकलने वाली उस रवानगी को देखना चाहिए जो खय्याम के हिस्से आई है।
पत्नी जगजीत कौर की चर्चा के बगैर खय्याम का काम अधूरा ही माना जाएगा। उन्होंने ढेरों फिल्मों में उनके लिए बेहद सुंदर गाने गाए लेकिन बाजार का यह गीत जरूर देखना चाहिए जो जगजीत कौर और खय्याम की जुगलबंदी से असाधारण महान गीत का दर्जा हासिल करता है। खय्याम साहब की रेशमी मुलायम जमीन से विदा लेते हुए जो कुल्लू की वादियों से उठकर अवध की महफिलों तक जाती है और दूसरी ओर मुगल बादशाहों के दरबारों तक उनका नज़ारा देखने को मिलता है, ऐसे में एक गीत को सुनाने के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूँगा जो खय्याम साहब के उस व्यापक रेंज को दर्शाती है जो उन्होंने अलग लीग पर चलकर हासिल किया। ये गीत जब बना है तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस दौरान कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और भप्पी लाहड़ी जैसे संगीत निर्देशक न सिर्फ सक्रिय थे बल्कि शीर्ष पर उपस्थित थे, मगर उनके बीच किस तरह खय्याम अपनी लोकप्रियता चुरा ले जाते हैं या मकबूलियत हासिल करते हैं वो इस धुन के साथ समझ में आती है। आप इसे सुने और खयाम साहब की इस महान यात्रा को सलाम करें।
संगीत है या कोई जादू, ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। अब रुख करते हैं लॉर्ड्स के मैदान का, जहां भारतीय टीम जीत से 175 रन दूर है। लंदन से जुड़ रही हैं इरम अब्बासी और स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त। लेकिन पहले बात करेंगे पंजाब के मोगा में मौजूद रविंदर सिंह रॉबिन से। क्रीज पर हरमनप्रीत कौर हैं और श्रोताओं हम आपको बता दें कि रविंदर सिंह रॉबिन हरमनप्रीत कौर के घर पर हैं। रॉबिन, क्या उम्मीदें हैं वहाँ, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं?
देखिए, जब सुबह जब हम यहाँ पे आए थे मैच शुरू होने से पहले पूरा घर पूरा उल्लास से भरा था, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। अब थोड़ा सा टेंस नजर आ रही है उनके चेहरे, उनकी बहन छोटी यहाँ पे है, परिवार सभी लोग यहाँ पे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इतनी भीड़ अपने घर में पहले कभी नहीं देखी थी, इतने पत्रकारों का जमावड़ और लोगों का आना जाना, नेताओं का। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक जैसे 5 लाख अनाउंस किए हैं उनके लिए, और भी बहुत सारी उनके लिए।
जी, मैं जानना चाहूंगा कि टेंस क्यों है, हरमनप्रीत कौर क्रीज पर हैं, 23 गेंदों में 7 रन बना चुकी हैं, 1 चौका जड़ चुकी हैं। पिछले मैच में सेमीफाइनल में बहुत बड़ी पारी उन्होंने खेली थी 171 रन की, मैच का रुख बदल सकती है, टेंशन की वजह क्या दिखती है आपको?
उनको लगता है कि ये जो पहले प्लेयर्स हैं उनको स्टे करना चाहिए था, इसलिए उनको थोड़ा सा नर्वस नजर आ रही है। लेकिन फिर भी ये सारे लोग दुआ कर रहे हैं और ये हिम्मत भी मानते हैं कि पिछली बार हरमन ने 171 रन बनाए थे, इनको लगता है कि अब भी पारी वो ही जितलाएंगे।
जी, हम रुक करना चाहेंगे इरम का। इरम, भारत में जो ट्विटर पर ट्रेंड है, पहले 3 टॉप ट्रेंड में भारतीय टीम और वर्ल्ड कप से जुड़े हुए ट्रेंड हैं, वहां पर क्या माहौल है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 175 रन जरूर भारतीय टीम दूर है, लेकिन कंट्रोल में दिख रही है टीम।
जी, चूंकि मिथाली राज जो है वो एक बहुत ही गलत रन लेते हुए रन आउट हो गई, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है जाहिर बात है सिचुएशन टेंस है यहाँ पर। और जैसा कि आपने कहा कि वुमेन को जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, तो वुमेन इन ब्लू को यहाँ पे भी सपोर्ट करने बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिन्होंने झंडे उठाए हुए हैं, वो नाराबाजी कर रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि इंडिया जो है हिस्ट्री बनाए यहाँ पर ये मैच जीतकर। टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब देखना यह है कि कौर जो है क्या वो इनिंग्स खेलते हैं जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, और क्या वो भारत को जिता पाएंगे,
क्या भारत को जिताती हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। रॉबिन, मैं एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, उनके परिवार के लोग, उनकी बहन आपके साथ है, वो क्या सोच रहे हैं?
मैं आप कहें तो मैं उनसे बात करवाता हूँ। वो अपने गालों पे उन्होंने तिरंगा झंडा बनाया, तिरंगा झंडा उनके हाथ में भी है, मैं उनसे बात करवा रहा हूँ आपके।
जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें हैं आपको हरमनप्रीत कौर को लेकर, जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद हैं।
जी सर, बिल्कुल हम काफी पॉजिटिव हैं, हमें अच्छे की उम्मीद है, हमें है कि बैटर्स पड़े हुए हैं अभी, वो सभी अच्छा परफॉर्म करें, होप फॉर द बेस्ट नाउ।
उम्मीद है अच्छे की। आदेश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे संक्षेप में, क्या मैच की स्थिति?
दिले नादान की आरजू तो यही है कि भारत जीते, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी होगी पूनम राउत और हरमनप्रीत कौर के बीच, क्योंकि ये दोनों आखिरी इस्टेब्लिश्ड बैट्समैन हैं। अगर ये जोड़ी लंबा नहीं खेलती तो फिर भारत के लिए परेशानी हो सकती है।
यानी इतिहास बनाना है तो इन खिलाड़ियों को टिककर रहना होगा, 175 रन जीत अभी दूर है। शुक्रिया इरम, शुक्रिया रॉबिन, शुक्रिया आदेश जी। हम लगातार bbchindi.com पर मैच से जुड़ी खबरें बताते रहेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे। वक्त विदा लेने का है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज संसद में अपने विदाई भाषण में अपने नेता के तौर पर अपने काम को याद किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उनके प्रति विनम्र व्यवहार उन्हें हमेशा याद रहेगा। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के संचालक ने कहा है कि पानी के अंदर चलने वाले एक रोबोट ने संयंत्र के भीतर के जमे हुए पिघले ईंधन की पहली तस्वीरें ली है। सेंट एंटोनियो शहर के कार पार्किंग की जगह पर खड़ी एक ट्रक में पुलिस ने 8 लोगों के शवों को बरामद किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।